सत्संग जी प्रेम से कहना, सत्संगत आज यहाँ बर्मिंघम वेंसबरी में इस सत्संग भवन में आप सभी के दर्शन करके बहुत खुशी हासिल हो रही है। और यहाँ यूके इंग्लैंड में आना करीब 8 महीनों के बाद फिर से हुआ, जब दिसंबर एंड में यहाँ ही इसी स्थान के ऊपर इसी रूप में सत्संग का आयोजन था। और उस यात्रा में यूरोप के और भी मुल्कों में जाने का मौका मिला था, चाहे वो इटली हो, चाहे स्पेन हो, चाहे स्वीडन हो, चाहे ऑस्ट्रिया हो। इसी प्रकार से अब की बार फ्रैंकफर्ट जर्मनी, लास्ट संडे वहाँ पर समागम में हिस्सा लेकर आपको भी खुशी हासिल हुई जो वहाँ पहुँचे और यूरोप के संतों के दर्शन करने का मौका मिला। और फिर आज आप सभी के इस सत्संग में दर्शन हो रहे हैं। ये सीमित सी यात्रा चंद दिनों की, और कल कनाडा के लिए रवानगी, जहाँ करीब 2 बरस के बाद जाने का मौका मिल रहा है, क्योंकि लास्ट ईयर निस NIS समागम के कारण किसी और मुल्क में जाना नहीं हुआ था उस वक़्त। तो इस यात्रा में नॉर्थ अमेरिका यानी कि कनाडा और अमेरिका में भी जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। और आप सभी हमेशा ही सत्संग और समागमों के लिए प्रोत्साहित रहते हैं, जो हमेशा यही चाहते हैं कि जीवन का सफ़र जो तय हो रहा है, एक एक घड़ी की कीमत डाली जा सके, एक एक अवसर, एक एक मौके का लाभ उठाया जा सके, क्योंकि घड़ियां जो हाथों से निकल जाती हैं वो लौट के नहीं आती हैं। जो सांस एक बार ले लिए गए दोबारा से नहीं आते हैं। जो पल छिन बीत जाते हैं वो लौट के नहीं आते हैं। इसलिए एक एक पल, एक एक अवसर, एक एक मौके का पूरा पूरा लाभ उठाया जा सके। और जब लाभ का जिक्र आता है तो सीधा ही ध्यान मटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स और प्राप्तियों की तरफ चला जाता है। लेकिन यहाँ पर असली लाभ, जो इस जीवन के सांसों की पूंजी को उस तरफ लगाकर जो हासिल होती है, यानी कि परमार्थ की तरफ, इस निराकार की याद में, इसके एहसास में, इसके रंग में रंग कर, मानवता इंसानियत की डगर पर चलकर, प्यार प्रीत निम्रता वाले गुणों से युक्त होकर, जो ये पूंजी लगाई जाती है इस रूप में, वही वास्तविकता में लोक और परलोक संवारने वाली होती है। तो इसलिए एक एक पल, एक एक जीवन का श्वास भक्त जन जानते हैं कि मूल्यवान है। और इसलिए हीरे जैसा जन्म है तो हीरे की ही कीमत वो डालते हैं। नादान इंसानों की तरह नहीं कि हीरे जैसा जन्म कौड़ी बदले जाए, कि अमूल्य जीवन मिला है लेकिन उसका खुद ही कौड़ी कीमत उसकी डाल दी है, किसी और ने नहीं डाली। हर इंडिविजुअल खुद डालता है उसकी कीमत, यानी कि अगर उसको एहसास है, उसकी कदर है, कीमत जानता है, तो वो फिर उसी अनुसार अपने आप को निभाता है। लेकिन अगर खुद ही उसके मन में कदर नहीं है, तो यानी कि उसने खुद ही अपने आप को बेकदरा कर दिया है। जब उसने इस सत्य की ही कदर नहीं की तो खुद ही बेकदरा हो गया। ये नहीं कि फलाँ ने मेरी कदर नहीं की या फलाँ ने मेरी कदर नहीं की, फलाँ फलूँ कोई मायने नहीं रखता है। हम खुद ही अपनी कदर बनाते हैं या गंवाते हैं। और वो होती है कदर तब जब हम इस मालिक को, नेकियों को, प्यार को, तमाम वर्चुअल्स को अहमियत देते हैं, तो हमारी भी कदर बन जाती है। बेकदरे वही होते हैं। कभी ये मत सोचो कि मेरे पास जी दौलत नहीं है, दौलत वालों की कदर है, मेरी कहाँ पर कदर है, फलां की पोजीशन है उसकी कदर है, मेरी कहाँ कदर है। ये हम केवल इंसानी ख्याल, सोच, दिमाग से काम लेकर ऐसे मूल्यांकन करते हैं, ऐसे एनालिसिस करते हैं और ऐसी फीलिंग्स को लाते हैं। लेकिन दरअसल मालिक, ये खालिक, ये निराकार, ये अल्लाह, ये परवरदिगार, वास्ता तो इससे हमारा, हिसाब तो सारे इसी से हैं, जवाबदेही तो यही है। तो अगर वाकई हमने, चाहे बेशक हमारे पास सामर्थ्य नहीं दुनियावी, लेकिन दूसरे लिहाज से हमने पूरी पूरी कदर की है एक एक सांस की, ह्यूमन वैल्यूज़ की, इंसानों की, इंसानों की फीलिंग्स की, तो फिर हमारी भी हरी की दरगाह में भी परवानगी है, हमारा भी वहाँ मोल है। तो इसलिए महापुरुष संत जन वो हमें जीवन जीने का सलीका बताते हैं कि अगर जी लोगे जीवन इस ढंग से तो तुम्हारा जो रुतबा है वो ऊंचा है। वो डिपेंडेंट नहीं है कि तुम्हें कोई पोजीशन दुनियावी मिली है कि नहीं, कोई किसी ऑर्गेनाइजेशन में तुम्हें ऊंचा स्थान मिला है कि नहीं मिला, जिस ऑफिस में काम करते हो वहाँ पर हायरार्की में तुम अभी चौथे पांचवें नंबर पर हो, अभी पहले दूसरे पे नंबर पे नहीं हो। तो इस लिहाज से अगर तुम ऐसा मानकर चल रहे हो, दुनियावी दृष्टि है, वो दुनियावी पैमाने हैं, लेकिन अपना रुतबा बुलंद कर लेता है वो जो वास्तविकता में इस जीवन के सफ़र को तय करते हुए वो विनम्र बना रहता है, वो विशाल बना रहता है, वो दूसरे की पीड़ा और दर्द को समझता है और उसको हरने के लिए कोशिश करता है, उसको कम करने के लिए कोशिश करता है। जैसे वो पंक्ति कई दफ़ा दास ने दोहराई कि जो सही मायनों में जीवन जीने का ढंग कि अपने दुख धैर्य से सहना और दूसरे के दुखों को बांटना, यानी कि अपने दुख जो हैं वो धैर्य से सहने, धीरज के साथ अपने दुखों को, निज दुख जो अपना है, जो सीधा सीधा मेरे से वास्ता जीवन के उतार चढ़ाव में है, तो उसको धैर्य से सहता है जो, और पर दुख को लगन से बांटता है, यानी कि बांटने का मतलब कि उसका कम कर देता है, उसमें शरीक होकर, उसमें शामिल होकर, उसको कुछ धारस दे के, उसको कुछ एक पॉजिटिविटी की तरफ मोड़ कर। तो इस प्रकार से ये जीवन जीने के सलीके हैं। तो महापुरुष संत जनों ने वो हमेशा ही हमें ऐसे ही जीवन जीने का असली ढंग बताया है कि यही जीवन जीने का सलीका अगर सीख जाओगे तो वास्तविकता में तुम्हारा जीवन जो है वो मायने रखेगा। उस जीवन का मोल है, वो जीवन ऐसा जिया जा रहा है जो वाकई ही मूल्यांकन करने लायक है, जो एक उसका एक अनुकरण करने लायक है। और ऐसे जीवन जीने वाले जब जब भी हुए हैं उनकी विशेषता है और उनका अनुकरण करने वालों ने लाभ उठाए हैं। उन्होंने सही मायनों में जीवन का सफ़र इस कदर तय किया है जो सफ़र अपने और औरों के लिए मुबारक बना है। तो यही एक सीखने लायक है बात। इस जीवन के सफ़र में हम चेतनता से या अचिंती, इंटेंशनली या अनइंटेंशनली, हम कहीं कुछ सीख जाते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशंस होती हैं हमारी, ऑब्जर्व करते हैं। बड़ों की बात तो छोड़ो, छोटे छोटे बात बच्चे भी, वो भी ऑब्जर्व करके बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो हम कदम कदम पर पता नहीं क्या क्या सीख रहे हैं, क्या क्या इंटेंशनली हम सीख रहे हैं, अपना रहे हैं, या फिर कुछ अनइंटेंशनली सटल वे में भी हमारे जहन दिलों दिमाग में दाखिल हो रहा है और फिर उसी अनुसार हमारा जीवन की चाल बन जाती है, वही हमारे संस्कार बनने लग पड़ते हैं और उस अनुसार हम फिर जीवन के सफ़र को तय करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर कहा यह जा रहा है कि ऑब्ज़र्व भी करना है तो तमाम भीड़ में से उसको ऑब्ज़र्व करो जो जिसका मूल्यांकन करने लायक है, जिसका अनुकरण करने लायक है, कि उसकी तरफ केंद्रित हो जाओ कि यहाँ ये पूरा वर्चुअस जीवन जी रहा है और मैंने इसी की तरह जीना है, मैंने इसी की तरह व्यवहार का रूप अपना बनाना है, मैंने इसी की तरह पेश आना है औरों से। तो केंद्रित तो किसी जीवन पे हुआ जा सकता है, इसीलिए महापुरुष संत जन कहते हैं कि गुणों के ग्राहक बने, कि इतने बड़ी भीड़ में हमारी दृष्टि कहीं पर भी रुक सकती है, किसी चेहरे की तरफ रुक सकती है, वहीं तक रह सकती है, लेकिन अब सवाल ये है कि वो किस भाव से उस जगह पे जाके वो नज़र टिक गई है। अगर तो वो जीवन ऐसा जो जिया जा रहा है जो वाकई ही सत्कार लायक है तो हम उसी के ऊपर केंद्रित हो जाएं, भूल जाएं दाएं बाएं क्या हो रहा है, हम केवल और केवल वहीं पर केंद्रित हो जाएं और बीन लें उन्हीं गुणों को, उन्हीं को सोख कर लें। यानी कि सोख कर ले का मतलब कि एक सोख करना वो होता है कि कोई लिक्विड चीज़ पड़ी है तो उसके ऊपर आपने कोई ब्लॉटर रख दिया है तो उसने सोख कर लिया और वहाँ जो था गीलापन वो ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर सोख करने का मतलब अनुकरण, कि जिससे आप सीख रहे हो उसका भी बरकरार है और मैंने भी उससे अपना लिया है, उससे मैंने अपने आप को भी भिगो लिया है, मैंने उस रंग को अपने ऊपर चढ़ा लिया है। और इस प्रकार से फिर हम जब इस जीवन के सफ़र को तय करते हैं तो वाकई ही वो औरों के लिए भी एक मार्गदर्शक बन जाता है। कहने वाले कहते हैं कि जहां हम चलने वालों से सीखते हैं वहां पर गिरने वालों से भी सीख सकते हैं, जो चलने वाले हैं उनसे सीखें लेकिन गिरने वालों से भी हम सीख लेते हैं। जैसे अंग्रेज़ी में कहावत है कि somebody falls and that fall has an importance for the ones who are walking behind him, one who has fallen down. For them it is to be alert that there is some stumbling block ahead. So they should become alert. And the ones who are walking in front of that person who has fallen down, for them also there is a message that they crossed that stumbling stone, but they didn't pick it up. If they had picked it up, the one who has fallen, he wouldn't have fallen down. So there is a learning for all, even from that person who has fallen down. तो इस प्रकार से दास जो बात कह रहा है कि हमने सीखना है, अनुकरण करना है उनसे, जो वाकई ही हम भी संभल जाएं और औरों को भी संभालने वाले बन जाएं। अगर पॉजिटिविटी है तब भी हमने संभल जाना है क्योंकि हमने उसको अपना लेना है। अगर कोई भटक गया है, बहक गया है, गिर गया है, उससे भी हमने सीख लेनी है कि अगर ये गिरा है तो मैं ना गिर जाऊँ। जैसे वो मिसाल चंद दफ़ा दास ने दी, एक इंसान कमरे से बाहर निकला, अपने घर से बाहर निकला और वहाँ केले का छिलका था, उस पे पाँव आया, गिर गया, चोट लगी, चला गया बाजार, वापस लौट आया, रात बीती, अगले दिन फिर घर से बाहर निकला जाने के लिए और वहाँ पर केले का छिलका नज़र आ गया उसको और कहने लगा ओफो आज फिर गिरना पड़ेगा। तो तू देख भी रहा है कि केले के छिलके के पे पैर आता है तो गिर जाता है बंदा, और तू कल ही गिरा अभी, और कल गिरा और आज तूने वो छिलका देख भी लिया है तो किस वैद्य ने कहा है कि उसके ऊपर फिर से पांव रख। तो अगर फिर भी रखता है तो इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा। तो अगर पहली बार ही गिरने पे संभल गया तो ऐसा संभला कि औरों को भी संभाल लेगा, लेकिन अगर फिर उसने उसी रास्ते पे जाना है, उससे बड़ा नादान और मूर्ख कोई नहीं हो सकता है। तो इसलिए हमने सीखना है, हमने ऐसी शिक्षा धारण करनी है जो हमारे जीवन को एक महत्ता प्रदान कर देती है, जिस जो औरों के लिए भी लाभदायक है जीवन। ऐसी शिक्षा हमने ग्रहण करनी है, ये नहीं कि दिमाग में जो मर्जी कूड़ा करकट जो कुछ भी है वो बस भरते चले जाओ, जो मर्जी नहीं भरते चले जाओ। फिजिकली भी हम डाइट लेते हैं, हम खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, वी ईट, बट इट्स नॉट नेसेसरी दैट वी हैव टू ईट एवरीथिंग विच वी सेट आर आई अपॉन। चीज़ें तो बहुत कुछ है संसार में, क्या क्या नहीं है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ को इस प्रकार से ग्रहण किया जाए। बताया गया है कि कुछ नरिशिंग फूड हैं, उसको ग्रहण करें। हमारी जो फिजिक है, जो हमारी जो फिजिकल जो रिक्वायरमेंट है, उसको हम उस रूप में पूरा कर रहे हैं और उसको बीमारी नहीं दे रहे हैं, ऐसे नरिशिंग फूड को ग्रहण कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ वो भी भोजन पदार्थ हैं जो हमें रोगी और बीमार कर देते हैं। तो इस तरह से हमें मालिक ने सोचने समझने की ताकत दी है। तो बस केवल अगर वो विजडम आ जाए तो फिर हम सही चुनेंगे, सही अनुकरण करेंगे, सही अपनाएंगे, सही धारण करेंगे। और अगर विजडम की ही आंख बंद पड़ी है तो फिर तो हम जो अनाप शनाप है वही कूड़ा करकट अपने अंदर डालेंगे और दूसरों को भी कूड़ा करकट ही देंगे। दूसरों को भी हम यही कुछ देंगे, बेहतर नहीं दे सकेंगे, अच्छा नहीं दे सकेंगे, क्योंकि मेरे पास सामान ही यही है। तो उसी सामान को जब बांटने पे आऊँगा तो वही कुछ तो दूंगा, मेरे पास कमोडिटी ही यही है, मेरे पास सामान ही यही है, तो इसके अलावा मैं फिर दूंगा क्या। तो अगर मैंने एनरिच कर लिया है अपने आप को विद वर्चूज, वो एनरिचमेंट दैट मेक्स मी रिच इन द ट्रू सेंस। उसने मैंने फिर उसी दौलत को आगे बांटा है। बांटा है मतलब कि मैं जिस किसी से भी पेश आया हूँ, साधारण सा दिखने वाला इंसान हो या फिर कोई सामर्थ्य इंसान हो, विद्या वाला इंसान हो या अनपढ़ इंसान हो, साफ सुथरे जो कपड़े ब्रांड क्लोथ्स पहन रहा है या फिर कहीं पर मैली कुचैली कपड़े कुर्ता धोती पहनी हुई है, मैं उसको पूरी तरह से उसी तरह से पेश आता हूँ, उसी तरह से मैं उसको प्यार देता हूँ। नहीं देखता कि ये कौन है, नहीं देखता ये सामर्थ है या ये साधारण सा इंसान है, नहीं देखता कि ये किस घर में पैदा हुआ है, किस कुल का है, नहीं देखता। केवल और केवल क्योंकि मेरे पास वो दौलत है, मैं वो दौलत फिर बांट रहा हूँ, मैं उस लिहाज से अब पेश आ रहा हूँ, उस तरह का मेरा व्यवहारिक रूप बन गया है। और इस प्रकार से मैंने सहज में ही अपने आप का सत्कार भी उनके मन में पैदा कर दिया है और उनको भागीदार भी बना दिया है उस दौलत के साथ। तो आज भी यहाँ पर आपने श्रवण किया, महापुरुषों के भाव श्रवण किए, द वर्ड्स ऑफ विजडम विच यू जस्ट लिसन इन दिस कॉन्ग्रीगेशन इन दिस प्रोसीडिंग्स विच आर टेकिंग प्लेस, दे ऑल मोटिवेट अस टू मूव टूवर्ड्स दैट डायरेक्शन, द डायरेक्शन विच सेंट्स सेजेस एंड प्रॉफिट्स वॉक्ड अपॉन सिंस टाइम इमेमोरियल। दैट्स वॉट वी हैव टू लर्न, दैट्स वॉट वी हैव टू इम्बाइब एंड दैट्स वॉट वी हैव टू गिव टू अदर्स। सेंट्स हैव ऑलवेज मेड देयर एफर्ट्स डे इन एंड डे आउट जस्ट टू ब्रिंग अबाउट दिस अवेयरनेस एंड एनलाइटनमेंट, but people, they choose not to follow that. They choose to follow that path which has always been, was a reason for somebody to fall fathoms deep. They always choose that. So they are the unwise people. Those who are full of wisdom, they will never follow that path. They will always choose the best, which is beneficial for one's own self or for others too, in the society, in the home, in the family, in the nation, and as a citizen of the whole world. So that's what has to be done. That's what has to be imbibed us, our own selves, with the qualities, the virtues, and shed the vices away at the very first occasion or the very next moment, shed the vices. As the saying goes, that get rid, let thy vices die before thee. Before you die, let your vices die. Just bury them deep in the ground. Do not carry them. This, your journey of life, becomes burdensome. If you're carrying those vices and suddenly your eyes are closed forever, heartbeat has suddenly stopped, no breath is being taken now, you have been clinically declared dead, but you are still carrying the vices. And you do not know when that moment will suddenly come, when you will be silent forever. So, in the very next step, in the very next moment, just start shedding that vice, all vices we have. They won't help you in this world or beyond. They will rather harm you in this world and beyond. Be virtuous and live a life which is beneficial for your own self and for others. Not materialistically, why is it is being said. Not from that angle. Because when we use this word benefited, one so and such person has been benefited, or I have been benefited, we just start thinking in terms of material, that he might be benefited because he is now the only heir of property of his father, or he has gained in stock market, or so and so forth. The beneficial part which is being discussed is the true benefit we get by imbibing such good qualities, human values. Just before leaving India, our art group over there, as you know, certain slogans are given and certain topics are given, and they all came to me and said that we are carrying this slogan of oneness since last August, starting from NIS. What about the coming annual San Samagam? I said, this time we will have human values as our topic. Human values, which are eroding day in and day out. Because of that, we are not having those human values. We do not regard them. We do not consider it as important. That's why how human being is behaving with his fellow human being. As you know, that currency of India has fallen down so much. Now a sterling pound is worth over 100 rupees. And as a poet of which, who belonged to the mission, around four decades back, he said that iska nahi gum ki giri sikke ki keemat, afsos hai keemte insaan giri jati hai. कि इसका नहीं गम कि गिरी सिक्के की कीमत, पहले भी गिरी हैं सिक्के की कीमत, कहीं डॉलर की गिर जाती है, कभी यूरो की गिर जाती है, कभी रुपी की गिर जाती है, फिर थोड़े समय बाद फिर अपनी जगह पे आ जाती है, फिर कहीं पर संभल जाता है. आज मेरा बिजनेस डाउन है, कल को फिर ठीक हो जाता है. लेकिन अगर इंसानियत से गिरते हैं तो वापस इंसानियत में स्थापित होने में अरसा लग जाता है, और कई तो सारी उम्र ही नहीं स्थापित होते, वापस उस पेडेस्टल पे वापस आते ही नहीं हैं, बह गए भाव में. जैसे वो उत्तराखंड के दृश्य आपने देखे कि नगर के नगर, गांव के गांव बहा के ले गया वो जल, और कई इस तरह से बहाव में बह जाते हैं कि स्थापित ही नहीं पाते हैं उस पेडेस्टल के ऊपर, अपनी उस असली जगह के ऊपर. तो इसलिए ज़रूरत है इस बात की कि ये जहाँ से बात आरंभ की कि समय बीत रहा है, एक एक पल बीत रहा है, एक इंसान रोए जा रहा है, रोए जा रहा है, लोग संभाल रहे हैं उसको, क्या बात है, क्यों रोए जा रहा है, वाई आर यू क्राइंग सो मच, वाई आर यू वीपिंग, वट हैपन टू यू. एंड ही सेड दैट I wanted to say sorry to such and such person, but he has passed away. Whom do I say now? तो कहने का मतलब कि अगर आपकी ईगो ही बीच में आ रही है सॉरी कहने के लिए भी, रियलाइज करते हुए भी अगर वो आप उस तरह से पेश नहीं कर रहे, तो फिर फ्रजाइल है ये जीवन. हो सकता है वो इंसान ना रहे अगले पल, और हो सकता है मैं ना रहूं इस पल, कोई भी इवेंचुअलिटी हो सकती है, कोई भी ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि वो ना रहे या मैं ना रहूं. तो वो एक चीज़ तो फिर कायम रही, बरकरार रही, जो धोई जा सकती थी, जो साफ़ की जा सकती थी, वो अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिली भी, बिकॉज वी वर लिविंग. We were not dead. And while we were living, there was opportunity at every step to make up for the faults or whatever we were losing in terms of relations or in terms of other matters. Opportunities were there at every step. Because we were living, we were breathing, we were very much alive. But suddenly when somebody's life stopped in this physical form, then there is no chance. You lost the chance. And something which could be washed away, that still remains. तो कहने का भाव है कि एक एक पल अपना, एक एक जीवन का जो सांस है हमारा, एक एक क्षण जो है हमारा, इसकी कदर करें. ये जीवन यूं ही ना तमाम कर दें संकीर्णताओं में रहकर, तेरा मेरा करते हुए, तू तू मैं करते हुए, दुत्कारते हुए एक दूसरे को, नीची दृष्टि से देखते हुए एक दूसरे को, इस प्रकार से इस जीवन, मूल्यवान जीवन की कदर हम कम ना करें, इसका मोल डालें, और इस प्रकार से हम ऊंचाइयों को छूते चले जाएं, इस प्रकार से हम इस जीवन के सफ़र को तय करते चले जाएं, जो जीवन का सफ़र हम कह पाएंगे कि सुहाना सफ़र है, कि वाकई ही जीवन का सफ़र सुहाना हो गया है, क्योंकि सुहानापन हमने खुद स्थापित कर लिया है अपने ही सोच ख्याल और अपने ही व्यवहार को सुंदर बनाकर. वो सुहावनापन हमने स्थापित कर दिया है, तो वो सुहावनापन स्थापित कर दिया है तो जीवन सुहाना हो गया. जैसे हम कड़कती धूप में जा रहे हैं, या फिर हम बरसात में जा रहे हैं एंड वी आर कैरिंग एन अम्ब्रेला। अब अम्ब्रेला मैं कैरी कर रहा हूँ तो मैं जिस तरफ भी कदम उठा के चल रहा हूँ आई एम इन शेड बिकॉज आई एम कैरिंग द अम्ब्रेला। आई हैव नॉट लेफ्ट दैट अम्ब्रेला समवेयर एल्स एंड आई एम वॉकिंग इन इन द स्कॉचिंग हीट और इन द डायरेक्ट सनलाइट। आई एम कैरिंग द अम्ब्रेला दैट मीन्स आई एम कैरिंग द शेड अलॉन्ग विद मी। वेयर एवर गो आई एम कैरिंग द शेड अलॉन्ग विद मी। इन दैट बाय डूइंग दैट ऐसा करने से मैं उस ठंडक को कायम रखता हूँ। तो इसी प्रकार से अगर मेरे जीवन का असली वजूद ऐसा बन चुका है, ऐसा कंडीशनिंग मेरे माइंड की, मेरे थॉट्स की, मेरी फीलिंग्स की हो चुकी है, तो फिर मैं कहीं भी जाऊंगा मेरा आनंद कायम रहेगा। मेरे वो जीवन, मेरे जो वैल्यूज़ हैं, जो ह्यूमन वैल्यूज़ की दास जो बात कर रहा था, वो वैल्यूज़ मेरी कायम हैं, चाहे वो विपरीत स्थितियां हैं या अनुकूल स्थितियां हैं या प्रतिकूल स्थितियां हैं, मेरे वो वैल्यूज़ कायम हैं। उसको मैंने कमज़ोर नहीं होने दिया है, उसको मैंने ढीला नहीं होने दिया है। यही वो छाया है जो मैं हर जगह पर कैरी करता हूँ और इस प्रकार से मेरा स्थान भी ऊंचा बना रहता है। तो अवसाद संगत, दास ज़्यादा और शब्दों का सहारा नहीं लेगा क्योंकि समय भी काफ़ी होता जा रहा है। सो आई एक्सप्रेस माई हैप्पीनेस टू बी वंस अगेन हेयर आफ्टर गैप ऑफ अराउंड 8 months व्हेन लास्ट आई विजिटेड यूके इन द लास्ट वीक ऑफ डिसम्बर। So I, that time also I could spend just 3 or 4 days in UK, and this time again just few days I got to spend here amongst you all, but though a short visit, but it has been very fruitful. And as has been mentioned, that the onward journey is towards North America. And that too is at a very fast pace, as the date of return also you have been informed of. So many places to visit in just few days. So it's just like what I do in India. The difference is here the journeys are mostly by air, and in India thousands of miles I travel by road just to reach the rural areas also, not just cities, not just metropoles. I try on every journey to cover rural areas because so many people, they live in villages who are deprived of basic needs and how they are living their life, and amongst them there are families of saints, and the conditions are same for both of them, the enlightened soul and the who are still in darkness. But even in those remote villages you can see the difference of those who are enlightened. They are always still praising the Lord. They are still so thankful to the God. Although they do not have what is required for even making a daily life comfortable, so many efforts they are making, but still you can see that bliss on their face, still that feeling of gratitude, of thankfulness to the Lord God Almighty. So is prakar se ये लगातार स्थान स्थान पर जाने के जो मौके मिलते हैं, तो ऐसे महापुरुष भक्तों के दर्शन करने का मौका मिलता है। एट द सेम टाइम आई गॉट गेट ए चांस टू मीट पीपल हु ऑल्सो वैल्यू दिस ह्यूमन लाइफ एंड हु know that God's importance in our lives. So that too also gives me happiness to meet such persons who try to participate in moving forward, taking forward this message, which is for the betterment of whole of mankind. So with these few words, I conclude my talk. Saint Sevit, love, Dharmak.